ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपाकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपेभ्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्दः श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद जब वृंदावन में थे तो उस समय बहुत सारे शिष्य उनके पास बैठे थे। तो प्रभुपाद ने उनको पूछा कि आप मेरे ग्रंथ पढ़ रहे हो, उनका अध्ययन कर रहे हो, तो उससे एक चीज आपने समझ ली कि कृष्ण से श्रेष्ठ कौन है। तो सारे भक्त सोचने लगे कृष्ण से श्रेष्ठ कैसे कौन हो सकता है, क्योंकि प्रभुपाद ने हर जगह लिखा है कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, सारे गॉड के हेड पे बिठा दिया है उनको। तो भक्त सोचने लगे कृष्ण से बढ़कर कौन हो सकता है, तो कोई उत्तर नहीं दे पाया। प्रभुपाद ने कहा कृष्ण से श्रेष्ठ एक ही है और वो कौन है, श्रीमती राधा रानी। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी वास्तव में यदि कोई भक्ति करना चाहता है, कृष्ण को अपना बनाना चाहता है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है श्रीमती राधा रानी का आश्रय ग्रहण करना। क्योंकि हम इस गौड़ीय संप्रदाय में हैं और गौड़ीय संप्रदाय की विशेषता क्या है, हमारी आराधिका कोई है तो वो कौन है, राधिका है, श्रीमती राधा रानी है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपने एक प्रवचन में कहा करते थे कि हम तो कृष्ण को नहीं जानते हैं, और यदि हम उस कृष्ण की आराधना तभी करेंगे यदि राधा रानी कहेगी कि मेरा कुछ संबंध उस कृष्ण से है, तब हम किसकी आराधना के बारे में सोचेंगे, कृष्ण की आराधना के बारे में। ये तो भाव बहुत बड़ा है, ये भावना हमारी नहीं है। तो लेकिन फिर भी श्रीमती राधा रानी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है कृष्ण की सेवा में। इसलिए श्रील प्रभुपाद के जीवन में भी हम देखेंगे तो प्रभुपाद के पिता जब प्रभुपाद छोटे भी थे तो हमेशा कहा करते थे साधुओं को अपने घर बुलाकर कि मुझे कुछ आशीर्वाद नहीं चाहिए और मेरे बेटे के लिए भी कुछ आशीर्वाद नहीं चाहिए, एक आशीर्वाद दे दो। क्या आशीर्वाद दे दो, कि मेरा जो बेटा है वो श्रीमती राधा रानी का भक्त बने। इसलिए प्रभुपाद जब अमेरिका भी गए तो वहां उतरते ही उन्होंने कविता लिखी मार्किने भागवत धर्म, तो उसमें प्रभुपाद कहते कृष्ण तब पुण्य हबे भाई जब राधा रानी खुशी हबे, कि राधा रानी जब खुश हो जाएगी ना तो आपका जीवन क्या है, सफल है, धन्य है। तो आप सब तो बहुत भाग्यवान है, ब्रजवास आप सबने स्वीकारा है और वास्तव में ब्रज में प्रवेश करने का जो परमिशन है वो कौन प्रदान करती है, श्रीमती राधा रानी। तो इसलिए राधा रानी का जो स्थान है सर्वोपरि है। इसलिए कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में कहते हैं तयोर उभयोरपि, कहते कि उन जो दो गोपिका हैं, पहले तो उन्होंने बोला इतने सारे 16,108, फिर 108, फिर उन्होंने कहा 8, फिर उसमें से भी दो और उन दोनों में भी फिर एक, वो कहते तयोर अपि उभयोर मध्य राधिका सर्वाधिका, उनमें भी जो श्रीमती राधा रानी है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो ऐसी राधा रानी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है और विशेष रूप से गौड़िया संप्रदाय में। बाकी संप्रदाय में जाएंगे तो वो लोग कहते हैं राधा रानी को अपने लक्ष्मी से बड़ा स्थान दिया है, बाकी संप्रदाय के भक्त या आचार्यगण भी कहते हैं, कहते हैं राधिका तो एक गोपिका श्री है, उसको इतना बड़ा स्थान दिया कि वो लक्ष्मी से श्रेष्ठ है, लेकिन वो ये नहीं जानते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब श्रीरंगम में गए तो चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट को वही समझाया कि वास्तव में जो लक्ष्मी भी ब्रज में आके कृष्ण का संग करना चाहती है, इसलिए वो बेलवन में बैठी है, वहां तपस्या कर रही है। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी लक्ष्मी आदि से भी सर्वश्रेष्ठ है या सर्वोपरि है, तो उनका आश्रय लेना ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तव में कृष्ण को कुछ आपको अर्पित करना है तो वो सरल है, किसके हाथ में पकड़ा दो, राधा रानी के हाथ में पकड़ा दो। प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते हैं, फ्लावर आप ऑफर करना चाहते हो, जाओ श्रीमती राधा रानी के हाथ में वो फ्लावर दे दो, तो वो कृष्ण को दे देगी। कृष्ण के अंदर हिम्मत नहीं है, कृष्ण उसको मना नहीं कर सकते कि नहीं लूंगा। कृष्ण डरते हैं, क्यों? क्योंकि प्रेम से इतना बंधे हुए है कृष्ण। इसलिए ये श्रीमती राधा रानी का और गोपिकाओं का जो प्रीति भगवान से इतनी अधिक है सेवा की, कि उन्होंने क्या किया, भगवान सारे गोपिकाओं के बीच में बैठकर वो कहते हैं कि न पा रहे हम, कि आपकी प्रेम और सेवा की भावना इतनी सर्वोपरि है कि मैं उससे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि गीता में कृष्ण कहते ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम, जिस भावना से आप मेरा भजन करोगे उतनी ही मात्रा में मैं भी आपका भजन करूंगा। लेकिन कृष्ण कहते गीता के शब्द भी यहाँ आके ब्रज में आके फेल हो जाते, गीता ब्रज में लागू नहीं होती है। यहाँ तो गीता से परे जो भगवत भावना है ये उसका स्थान है। तो ऐसा श्रीमती राधा रानी का जो स्थान है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये गौड़िया वैष्णव की क्या है, स्वामिनी है। तो ये जो बरसाना है, ये बरसाना बहुत महत्वपूर्ण स्थान है भक्तों के लिए भी। और हम सब जानते हैं ये राधा नाम का मतलब क्या है, कैसे ये श्रीमती राधा रानी का नाम पड़ा है। ये आचार्य गण कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण अपने गोलोक धाम में अकेले थे तो भगवान एक शतशृंग पर्वत है आध्यात्मिक जगत में, उसके पास भगवान बैठे हुए थे सुंदर गार्डन में, और वहां भगवान बैठकर इतना रमणीय स्थान देखकर भगवान आनंद की अनुभूति करना चाह रहे थे। तो ऐसे सोच ही रहे थे आनंद के बारे में, तो भगवान के लेफ्ट साइड से एक महान सुंदर तेजस्वी चंद्रमा के समान उनका तेज सुंदर तेज आदि था, तो वो देवी प्रकट होती है। और प्रकट होके क्या करती है, वो बैठती नहीं, क्या करती है, दौड़ती है। डिवोटी का मतलब एक्टिव। अब देखो कई बार हम सोचते भक्त का मतलब बस अभी सब छोड़ दिया, अभी कुछ नहीं करना है मुझे, कुछ कार्य नहीं करना है। भक्त का मतलब है जो दौड़ता है कृष्ण की सेवा के लिए। इसलिए दो सेवक बहुत प्रमुख है। कौन है दो सेवक, एक हनुमान और दूसरे गरुड़। उनको देखा है आपने कि वो लेटे हुए हैं बैठे नहीं, वो हम जब हम दिल्ली मंदिर में थे तो सामने गरुड़ को रोज देख के याद आती कि वो ऐसी मुद्रा में बस भगवान इशारा क्या करे तो जंप मारेंगे, ऐसे नहीं को पालती मार के प्रसाद के लिए बैठे हैं। गरुड़ हमेशा ऐसी मुद्रा में बैठे हैं कि बस भगवान का इशारा देखते और सेवा करने के लिए दौड़ना चाहते हैं। हनुमान भी वैसे ही है, तैयार रहते सीधा, बस आपकी आज्ञा, चरणों में ऐसे बैठे हैं कि तुरंत दौड़ सकते हैं। तो वैसे ही श्रीमती राधा रानी जब प्रकट होते ही दौड़ी कृष्ण की सेवा के लिए, और सेवा के लिए क्या दौड़ती है, और जाके पुष्प का चयन करती है और लाकर किसको ऑफर करती है, कृष्ण को। इसलिए आचार्य गण कहते हैं रा का मतलब है कि जो राधिका है, और धाव मानाना मतलब जो दौड़ पड़ी, प्रकट होते ही कृष्ण की सेवा के लिए जो दौड़ी है वो वास्तव में कौन है, श्रीमती राधा रानी है। तो ऐसा श्रीमती राधा रानी राधिका ही है। तो इस प्रकार से जो श्रीमती राधा रानी है वो विशेष विशेष स्थान रखती है। और ये जो बरसाना है, वैसे तो केवल बरसाना ही नहीं, ऐसा कहा जाता है कि जो ये जो पूरा ब्रज मंडल है उसमें ऐसा एक स्थान नहीं है कि जहाँ अपने कृष्ण ने अपने चरण नहीं रखे हो, ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिस पर भगवान ना चढ़े हो, ऐसा आचार्य गण कहते हैं। तो वैसे श्रीमती राधा रानी के चरण धूलि से अंकित ये ब्रज भूमि है, और विशेष रूप से ये बरसाना है जहाँ की हर रज में किसके चरण पड़े हैं, भगवान कृष्ण के चरण। और ऐसे चरण धूलि को लेने के लिए भी कृष्ण नंदगांव आदि से दौड़ दौड़ के यहाँ आते थे हर रोज सुबह। भगवान नंदगांव तो सामने वाला पर्वत है, नंदेश्वर पर्वत, उस समय तो दिखाई देते थे, यहाँ खड़े हो जाती थी राधा रानी तो कृष्ण भी वहां से देखा करते थे। तो कृष्ण नित्य रूप से वहां से नंदगांव से हर सुबह के समय में यहाँ आते थे, और वास्तव में राधा रानी के चरण धूलि को प्राप्त करने की कामना रखते थे। तो ऐसे ही जो बरसाना धाम राधा रानी के चरण धूलि से भरा पड़ा है, और कुछ भक्त कहते कि राधा का मतलब है जो कृष्ण के चरणों की राह दे, है ना, शेल्टर दे एक प्रकार से, उनको राधा कहते हैं। इसलिए ब्रज भाषा में बोला गया है ब्रज में रतन राधिका गोरी रे, क्योंकि ब्रज में एक ही रत्न है और वो कौन है, राधा रानी है। कि ऐसा रत्न है ब्रज में रतन राधिका गोरी रे, हर लीनी वृषभानु भवन ते नंद सुवन की चोरी। कि ये जो कृष्ण है, यदि राधा रानी रत्न है तो वो रत्नों को चुराने वाला कोई चोर होना चाहिए। तो इसलिए आचार्य ने एक अष्टकम लिखा है, क्या है उसका नाम, चोर आग्रगण्य अष्टकम। तो उसमें ये चोरों में जो आग्रगणी है, टॉप मोस्ट जो चोर है वो कृष्ण है, और वो क्या चुराने आते हैं, श्रीमती राधा रानी। और इसलिए वही कृष्ण कलियुग में जब प्रकट होते हैं तो राधा रानी की दो चीजें चोर चुरा कर प्रकट होते हैं। क्या चुराया उन्होंने, एक है राधा रानी की अंग कांति और दूसरा है राधा रानी का भाव, और वो कौन है, श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार से जो कृष्ण है वो वास्तव में सबसे बड़े चोर है, और वो राधा रानी रूपी जो रत्न है उसको चुराते हैं। तो इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि कृष्ण यहाँ आते हैं या इस युग में भी प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और वो क्या करते हैं, इन दो चीजों की चोरी करते हैं। और वैसे भी नीचे हम वहां उतरे थे गहवर वन में, जहाँ गाड़ी खड़ी की तो वहां एक बोर्ड ऐसे लगाया हुआ था उस झाड़ियों में, तो उसमें ये दो लाइन लिखे हुए थे। उसमें लिखा था, बरसाने के वास को आस करे शिव शेष, जाकी महिमा की कहे जहाँ कृष्ण धरे सखी वेश। वो कहते कि बरसाने की बात क्या है, ये स्थान ऐसा है कि जहाँ निवास करने के लिए कौन तरसते हैं, शिवजी है, ब्रह्मा है, शेष आदि भी। कहते इसकी महिमा ऐसी है कि यहाँ कृष्ण सखी वेश बन के रहते हैं। वो दान बिहारी का दर्शन किया ना हमने, उनके हाथ में वो थे क्या कहते हैं उसको, कंगन, हाँ। तो भगवान यहाँ सखी वेश धारण करके रहते हैं बरसाने में, और आते भी है राधा रानी को मिलने के लिए तो वो सखी बन के आते हैं। एक वो लीला आती है आपने सुनी होगी, श्यामा सखी बन के कृष्ण आए थे और इतने सुंदर लग रहे थे, हाँ, लेकिन उनका पर्दाफाश हो गया, वो पकड़े गए। यहाँ कोई भी बच नहीं सकता, राधा रानी को कपटता सहन नहीं होती। इसलिए गोपी गीत में गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, आप एक चीज में बहुत धुरंधर हो, एक्सपर्ट हो, क्या, कि आपको अपने भक्तों का जो घमंड है या कपटता की भावना है वो सहन नहीं होती है। तो इस प्रकार से यहाँ राधा रानी के द्वारा व्यक्ति पकड़ा जा सकता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं एक तात्पर्य में चैतन्य चरितामृत के, कहते कि एक नाई था और वो नाई राधे 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 बोलता रहता था। तो कोई गया उधर कोई भक्त अपना शेविंग करने, प्रभुपाद उसमें लिखते हैं कि उसको लगा ये राधे राधे बोलता है, कितना बड़ा भक्त है। उसने पूछा किसका नाम है राधे राधे, वो कहता है मेरी पत्नी का नाम है, वो मुझे छोड़ के चली गई इसलिए उसका नाम लेता हूँ। तो ऐसे नहीं चलेगा, लेकिन राधा रानी का जो दया की भावना है उसके बारे में जब आचार्यगण कहते हैं कि उनकी दया की कोई सीमा नहीं है। यदि राधा रानी को तत्व की दृष्टि से देखे या समझे तो राधा रानी वास्तव में भगवान की आह्लादनी शक्ति है, आनंद प्रदान करने वाली अंतरंगा शक्ति है। और दूसरा एस्पेक्ट यदि समझे तो राधा रानी वास्तव में कृष्ण की अनुकंपा जब भी जगत में प्रकट होती है, अनुकंपा कृपा जो एक मूर्तिमान रूप धारण करती है, तो वो कौन है, श्रीमती राधा रानी है। वो गहवर वन का वर्णन आता है कि एक व्यक्ति अपने पत्नी का नाम था किशोरी किशोरी, वो किशोरी किशोरी चिल्लाते हुए गहवर वन में भटक रहा था। राधा रानी को लगा कि ये मुझे ही पुकार रहा है, फिर भी राधा रानी ने उसके ऊपर कृपा कर दी गहवर वन में। तो इतना उनका दया का नेचर है। इसलिए हम वो सुनते हैं ना कि जब राधा रानी एक बार यहाँ से नंदगांव गई तो वहाँ कृष्ण सुबह उठते ही नंद महाराज के साथ सब लोगों को दान देते हैं, हाँ, जो भी भोजन या जो भी देते होंगे दान आदि सुबह सुबह। तो राधा रानी ये देख रही थी, बड़े आनंदित हो रही थी, लेकिन उन्हीं लोगों को दान दे रहे थे जिनके पास पात्र हो। राधा रानी को तो बड़ा दुख हो गया, ये कैसे कृष्ण है, जिनके पास पात्र हैं उन्हीं को दे रहे, और जिनके पास पात्र नहीं गरीब आदि तो उनको उनको तो वैसे जाना पड़ रहा है। राधा रानी को बहुत गुस्सा आ गया, दुखी होकर वो बरसाना आ गई और उन्होंने अपने वृषभानु महाराज को बताया, पिता को बताया, तो उनको वो भी उनको बताया कि ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि नंद महाराज और नंदलाल कृष्ण हैं इस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं, तो ये उन्हीं को उनको भी मिलना चाहिए जिनके पास क्या नहीं हो, पात्र नहीं हो। तो उन्होंने कहा मैं करूंगी। तो वास्तव में वही राधा रानी का जो भाव है ये है दया का, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उस भावना को लिया और उस भावना से क्या किया उन्होंने, गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, वो जो प्रेम रूपी धन है जो कृष्ण पात्रता देखकर देते थे वही राधा रानी का है। पात्रा पात्र विचार नाही नाही स्थाना स्थान, जयी जहा तहा करे दान, जो भी जहां मिले उसके पास योग्यता हो या ना हो उसको दे देंगे। तो इस भावना से राधा रानी का जो मूड है उसको कृष्ण ने लिया, महाप्रभु के रूप में आए। उन्होंने देखा नहीं ये म्लेच्छ है, यवन है, पढ़ा लिखा है, काला है, गोरा है, जो मर्जी है, वो उसको कृष्ण नाम या जो प्रेमा भक्ति है चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान की। तो ऐसा जो दया की भावना है श्रीमती राधा रानी की है। तो हम जब आते हैं तो ऐसे जो राधा रानी है उनका आश्रय लेने का प्रयास करना चाहिए, जो इतनी दया की जो मूर्तिमान स्वरूपा है। तो इसलिए कहते कि ऐसे बरसाने में निवास करने के लिए ये ब्रह्मा शिव आदि भी हमेशा लालायित रहते हैं। ब्रह्मा श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 14वें अध्याय में पढ़ेंगे तो वह ब्रह्मा कहते मुझे तो वो कहते कितनी धन्य है ये वृंदावन की जो गोपिकाएं हैं, गोप वधु हैं, हाँ, कि जो इतना कृष्ण से इतना अधिक प्रेम रखती है। तो ब्रह्मा कहते मैं तो पत्थर बनना चाहता हूँ या कोई थोड़ा सा लता पता बनना चाहता हूँ ताकि उनकी जो चरण धूलि है मैं मेरे ऊपर पड़े। तो ऐसी ही प्रार्थना ब्रह्मा ने एक बार कृष्ण से की थी। भगवान कृष्ण से उन्होंने ये प्रार्थना की कि मैं क्या करना चाहता हूँ, आपके दिव्य लीलाओं को सदैव देखना चाहता हूँ। तो भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के अंदर बहुत लालसा थी भगवान के लीलाओं को देखना, उनके गुणगान को सुनना आदि। तो भगवान ने उनको कहा ततो ब्रह्मन व्रजम गत्वा वृषभानु पुरंगतः पर्वतो भवसी त्वम ही मम क्रीडा च पश्यसि। हे ब्रह्मा तुम क्या करो, ब्रज में चले जाओ और वहां जाकर एक पर्वत के रूप में बन ये करो, प्रकट हो जाओ। तो ये जो बरसाना है ये कौन सा पर्वत है, ब्रह्माचल भी कहते हैं इसको, ब्रह्मगिरी भी कहते हैं। जैसे ब्रह्मा के चार सर थे वैसे ही चार यहाँ पर्वत हैं। एक है विलासगढ़, उस तरफ विलासगढ़, मानगढ़, दानगढ़ या दान बिहारी है, और ये है भानगढ़ या भानुगढ़, यहाँ वृषभानु ये नाम उनके नाम से पड़ा है। तो यहाँ वृषभानु महाराज का महल था, श्रीमती राधा रानी इसी स्थान में वास्तव में क्या करते थे, निवास करते थे। इसलिए ये जो बरसाना है इसमें दो लीला बहुत प्रमुख है। ये दो लीला साधारण रूप से किसी और जगह इतनी ज्यादा नहीं मिल पाई जाती, एक है दान लीला और दूसरी है मान लीला। ये दोनों के लिए बरसाना है, दान लीला मान लीला। तो ऐसा ये बरसाना में साक्षात ब्रह्मा यहाँ निवास करते हैं इस रूप में। आप सोचो इतना बड़ा व्यक्ति, सोचो हमारे संप्रदाय का प्रमुख फाउंडर आचार्य, सृष्टि का आदि जीव, वो भी ऐसा एक छोटा सा ये बनना चाहता है, उनके चरण धूलि का कण बनना चाहता है। तो यही भावना हमें भी सीखनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु ने हमें एक प्रार्थना दी है, कौन सी प्रार्थना है, आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषय में भवामुदो कृपया तव पाद पंकजम सित धूलि सदृशम विचिंत है। कि हे नंद तनुज कृष्ण, और ये वास्तव में ये प्रार्थना हमारे हृदय में दीनता का भाव लाती है, शरणागति का भाव लाती है। और जब हम हरि नाम लेते हैं तो इस भावना से हमेरा हरि नाम करेंगे कि रियली कृष्णा मैं तो इस भव सागर में गिरा हो, हाँ आप मुझे उठा लो और कहा स्थान दो, आपके चरण कमल का धूलि का कण बना लीजिए, मतलब इतना निम्न स्थान दे। हमें कोई बड़ा भक्त बनने की अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए, हमें अभिलाषा क्या रखनी चाहिए, गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास, जितना अधिक एक दासत्व का भावना होगा उतना ही हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है सर्वोपरि या उन्नत होगा। तो इस प्रकार से इतने बड़े बड़े जो लोग हैं वो चाहते हैं ऐसा जो स्थान है। इवन उद्धव को देखो, उद्धव सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था इस ब्रह्मांड में। आप जानते कहाँ पढ़ने के लिए गया था? उस यूनिवर्सिटी वहाँ वो बृहस्पति का शिष्य हेवन, हेवन स्वर्ग में गए थे वो पढ़ने के लिए गए थे, बृहस्पति से शिक्षा ली थी। लेकिन वो भी जब आए, क्योंकि भगवान ने देखा मेरा उद्धव इतना प्रिय है भगवान को, हाँ एक दिन भगवान उनका हाथ अपने हाथ में रखते हैं और कहते हैं उद्धव मोहे ब्रज विसरतनाय। मथुरा में जब भगवान कृष्ण गए तो कृष्ण के पास अपना हृदय खोलने के लिए कोई और नहीं था, तो कृष्ण उनको उद्धव को कहते कि उद्धव मुझे ब्रज को भूल नहीं सकता मैं। तो कहते उद्धव तुम मुझे इतने प्रिय हो जितने लक्ष्मी प्रिय नहीं है, बलराम मुझे प्रिय नहीं है, शिवजी प्रिय नहीं है, इतने तुम प्रिय हो। तो जब हम कोई हमारा प्रिय है तो हम उसको सबसे अच्छी वस्तु देना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने सबसे अच्छी वस्तु क्या दी, उनको ब्रज में भेजा और जाओ आप भगवान की प्रेममय सेवा कैसे करनी है मेरी वो सीख के आओ। और वो आकर यहाँ देखते हैं कि इतना उन्नत स्थान इन ब्रज रमणियों का, गोपियों का आदि का, तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो कुछ और नहीं बनना चाहता, मैं तो इनके चरण धूलि अपने सर में रखना चाहता हूँ, ये मुझे मिले तो मेरा जीवन धन्य है। तो इस प्रकार से वो आते हैं और कुसुम सरोवर हम जाते हैं ना वहाँ, तो वह उद्धव प्यारी है, उद्धव का स्थान है। तो वहाँ उद्धव आज भी कहते कि लता पता के रूप में वहाँ निवास करते हैं। तो इतने बड़े बड़े लोग ये भावना रखते हैं, ये इच्छा रखते हैं, चरण धूलि आदि की कामना करते हैं। तो इस प्रकार से हमें भी ये जो मूड है वो स्वीकार करना चाहिए। और बरसाना की एक विशेष खास बात क्या है, शास्त्र कहते हैं कि यहाँ विशेष रूप से भगवान सदैव मुकुट धारण करते हैं, लेकिन यहाँ आके भगवान उस मुकुट को रखते हैं किसके चरणों में जाकर, राधा रानी के, और उनका चरण धूलि को अपने माथे में रखते हैं। जब राधा रानी मान करती हैं, हाँ वो जो मानगढ़ है उसी लिए है, हाँ जैसे कोप भवन हुआ करता था, कई कई काम सुनते ना एक भवन अलग से रूम घर में, वैसे राधा रानी मान कर और मान भी करती है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि राधा रानी अपना कुछ उतना दर्जा दिखा रहे, नहीं, वो मान करती है तो वो मान में भी सबसे आनंद किसको मिलता है, कृष्ण को। क्योंकि भगवत भक्ति क्या है, केवल कृष्ण को आनंद प्रदान करना हर कार्यों से, कृष्ण इसलिए ये मापदंड है, मैं जो कार्य कर रहा हूँ या कर रहे हो क्या ये कृष्ण इससे प्रसन्न होंगे, गुरु इससे प्रसन्न होंगे, तो वो कार्य करना चाहिए, तो वो भगवत भक्ति है। अन्यथा वो भगवत भक्ति नहीं है, वो क्या है, काम है, फिर अपनी संतुष्टि है, वो प्रेम नहीं है। तो ये जो ब्रज है ये प्रेम का स्थान है, इस यहाँ प्रेम के अलावा कोई वस्तु एग्जिस्ट नहीं करती है, हाँ इसलिए प्रेमी भक्तों का ये स्थान है वृंदावन। तो एक बार तुलसीदास आए थे वो तो हैरान हो गए, वो कहते अरे यहाँ आके ये विशेषता है, बाकी किसी भी धाम में जाओ तो वहां जैसे अयोध्या में है वहां सीताराम सीताराम दोनों का नाम लेना पड़ता है, या द्वारका में भी जाते तो रुक्मिणी द्वारकाधीश ऐसे बोलना होता है, लेकिन ब्रज में आते तो किसकी चलती है यहाँ, राधे राधे, केवल कृष्ण भी नहीं यहाँ क्या है, ओनली राधे राधे है, बाकी जगह सीताराम है और बाकी बहुत कुछ है, तो लेकिन यहाँ श्रीमती राधा रानी, क्योंकि राधा रानी क्या है, राधे वृंदावनेश्वरी, यहाँ एकमात्र ईश्वरी है, ओनर है इस धाम की, और वो है श्रीमती राधा रानी। तो ऐसे राधा रानी अपने एक कुमार अवस्था तक, 1 से 5 साल की आयु तक रावल में ही थी, और उसके बाद हम जानते हैं कि जब भगवान नंद महाराज आदि शिफ्ट हो गए थे महावन से, वो आके छठी करा रहे हैं कुछ साल, तो उस समय फिर नंदग्राम आए, तो उसी समय वृषभानु महाराज भी कहाँ आए, बरसाना में आकर यहाँ इस स्थान में वो निवास करने लगे। तो ये जो प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं कि ये जो वृंदावन ये बरसाना है, ये वास्तव में यहाँ से सारा जो रस है वो फ्लो होता है, हा? क्योंकि ब्रज में रस की प्रमुखता है और रस का जो भंडार कहाँ है, बरसाना में है, हाँ। तो यहाँ से सारा, जैसे वो दीनबंधु प्रभु कहा करते थे, बरसना से वर्षा, वर्षा कहते, वर्षा मीन्स जल बरसता है ना, तो वैसे कहते हैं यहाँ से बरसता है, हाँ रस बरसता है, ये रस स्थली है और सारे 12 वनों को रसमय बना देता है। और कोई व्यक्ति यहाँ आकर प्रणाम भी करता है हाँ, तो उसकी जो भी चिंतित मन इच्छा है भगवत सेवा की, वो श्रीमती राधा रानी क्या करती है, पूर्ण करती है। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं तो मैं तो बरसाना जिस दिशा में है उस दिशा में प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ, ताकि श्रीमती राधा रानी उसको स्वीकार करे। और वो राधा रानी जो एक मणि के भांति है वो ऐसे स्थान में विराज रही है। तो ये बरसाना के बहुत सारे नाम हैं, जैसे मैंने कहा पहला नाम है बरसाना, हाँ कि जहाँ रस की वर्षा होती है। लेकिन कौन से रस की वर्षा होती है, माधुर्य रस की वर्षा होती है। हाँ तो ये संसार में दो तीन प्रकार के रस हैं, एक है वैकुंठ रस और एक है स्वर्गीय रस और एक है पार्थिव रस। तो अधिकतर लोग ये दो रसों के पीछे भाग रहे हैं, पार्थिव रस और स्वर्गीय रस। अब पार्थिव रस मीन्स भौतिक जगत में जो इंद्रिय तृप्ति से मिलने वाला एक प्रकार का आनंद। तो वैकुंठ रस क्या है, भगवत भक्ति का आनंद। और जो स्वर्गीय, कुछ लोग यज्ञ दान कर्मकांड आदि करते हैं कि मृत्यु के बाद गति मिलेगी, कहाँ जाएंगे हम, स्वर्ग लोक में जाएंगे, तो स्वर्गीय रस है। और तीसरा रस है जो निम्न लोग हैं वो कर्मकांड आदि करके जो इंद्रिय तृप्ति करके पार्थिव संसार का उपभोग करना चाहते हैं इंद्रियों के माध्यम से, तो उसका ये रस है। तो लेकिन जो भक्त है वो उन्नत रस की सदैव कामना करता है, क्योंकि संसार में जो रस है उससे कभी भी हमारी तृप्ति नहीं होने वाली। जैसे आपको रेगिस्तान में डाले और एक बूंद पानी दे, जैसे मुझे एक स्टोरी याद आई कि एक व्यक्ति रेगिस्तान में गया, पहले तो दौड़ रहा था, फिर चलने लगा, थक गया, पानी नहीं है दूर दूर तक, फिर इतना चला नहीं जा रहा था घुटने तक गिर गया, फिर ऐसे ऐसे चलने लगा, अभी मरने वाला था तो एक हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहा था और उसका उसके ऊपर लिखा था WATER वाटर नीले अक्षरों में। इसको लगा कि ये तो मेरे लिए आ गया है हेलीकॉप्टर, पानी लेके आ गया है, और वास्तव में ये जहाँ बिल्कुल गिरा हुआ था वहां आकर लैंड हो जाता है वो हेलीकॉप्टर, और उसमें से एक व्यक्ति उतरता है, उतर कर एक चम्मच निकालता है, चम्मच में ऐसे पानी लेके आता है। तो अभी उसको दोनों जीना मतलब मरने से भी ज्यादा वो है दुखमय था, ना उससे प्याज बुझ सकती है और ना क्या कह सकते दोनों चीजें हैं। तो वैसे ही है इस संसार में जो भी इंद्रियों के माध्यम से उपभोग है वो उस बूंद के समान है। इसलिए चपल सुखलव लागी रहे, एक गीत में आता है ना कि संसार का जो सुखोपभोग है वो अशाश्वत है और एक बूंद के समान है, तो वो कितना हम उससे कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। इसलिए पूरा जोर लगाना है तो वैकुंठ रस के लिए, भगवत भक्ति का जो रस है। इसलिए रूप गोस्वामी ने कौन सा ग्रंथ दिया है, भक्ति रसामृत सिंधु। अब सोचो भक्ति का जो रस है वो क्या है, उसका क्या है, समुद्र है। और उसके बाद एक आचार्य हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने वो बुक लिखा उसके ऊपर भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु। आगे वो क्या लिखा, भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु। तो वो कहते चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि महाप्रभु जो भक्ति देने आए उसको बूंद का भी कुछ थोड़ा सा अंश किसी व्यक्ति को मिले ना वो उन्मत्त पागल हो जाएगा, इतना दिव्य है, और दूसरों को भी आप्लावित कर देगा। तो इस प्रकार से ये जो कामना हमें करनी है तो ये भक्ति रस के लिए करनी चाहिए। और ये भक्ति रस के स्टोर हाउस कितने हैं, 5 है। हम रखते ना कुछ बोतलें भर के रखते अलग अलग जूसेस की, तो वैसे महाप्रभु ने कहा ये रस 5 बोतलों में रखा हुआ है। 5 बोतलें कौन कौन सी है, पंचांग भक्ति, एक है नाम संकीर्तन, एक है साधु संग, एक है भागवत श्रवण, एक है मथुरावास, और 5वां है श्रद्धाय श्री मूर्तिर सेवा, श्रद्धा के साथ भगवान के जो अर्च विग्रह है उनकी सेवा करना। तो ये 5 बहुत पावरफुल है, लेकिन इनमें भी सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से ये जो नाम संकीर्तन है वो सबसे श्रेष्ठ साधन है। तो इसी कारण से व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये जो भक्ति रस है उसको प्राप्त करने के लिए दो चीजों का सहारा लेना चाहिए। हाँ, तभी वास्तव में व्यक्ति का जो जीवन है वो धन्य हो सकता है। और एक बरसाना का नाम है बरसानु है, क्योंकि यहाँ ऊंची ऊंची पर्वत की चोटियां हैं। एक नाम है वृषभानुपुर, और ये वास्तव में बहुत पुराना नाम है वृषभानुपुर। और इस प्रकार से अलग अलग नाम इस स्थान को दिया है। और हमारे कई सारे आचार्य, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु, ये नाम सुने होंगे ना आपने, इन सबको लेकर आए थे। राघव पंडित नाम के एक महान डिवोटी थे, वो इन आचार्यों को लेकर यहाँ की परिक्रमा के लिए आए थे। तो ऐसे ये स्थान है जहाँ हमारे संप्रदाय के एक महान आचार्य नारायण भट्ट गोस्वामी, गदाधर पंडित गोस्वामी के शिष्य थे कृष्णदास ब्रह्मचारी, और उनके शिष्य थे ये नारायण भट्ट गोस्वामी। ऐसे कहा जाता है कि गोस्वामियों के बाद सबसे अधिक वृंदावन में लीला स्थलियां किसी ने खोजी है तो ये नारायण भट्ट गोस्वामी है। सबसे ज्यादा लीला स्थलियां ब्रज की 84 खोज ब्रज मंडल में। तो ऐसे ये अंतिम समय तक ऊंचा गांव में यहाँ रहते थे। ललिता सखी का जो स्थान है वहाँ ही उनका समाधि है, और उन्होंने ब्रज भक्ति विलास एक ग्रंथ लिखा है जिसमें ब्रज के सारे लीला स्थलियों का उल्लेख है। वहाँ के प्रेयर्स क्या होने चाहिए, प्रणाम मंत्रस क्या होने चाहिए, बहुत रेयर बुक है। तो वो उस ग्रंथ की उन्होंने रचना की थी, और भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे। तो ऐसे जो ये नारायण भट्ट गोस्वामी हैं उनको ये विग्रह प्राप्त हुए थे जिनका हम यहाँ दर्शन करते हैं। लाडली महाराज, क्या कहते हैं यहाँ, लाडली महाराज है ना, उनकी चलती है यहाँ। तो ऐसे राधा रानी का जो विग्रह है उनको प्राप्त हुआ था, और नारायण भट्ट गोस्वामी ने सबसे पहला जो मंदिर है फिर यहाँ बनाया था। राजा तोरणमल जो अकबर के अंदर सेवा करते थे उनके सहायता से, ये पुराना मंदिर था ये जो दिख रहा है ना, फिर बाद में ये बड़ा बनकर फिर यहाँ राधा रानी यहाँ शिफ्ट हो गई कुछ सालों पूर्व। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का ये विशेष स्थान है, और श्रील प्रभुपाद की हमारे लिए बहुत बड़ी देन है। श्रील प्रभुपाद ने हर कोई जहाँ मर्जी रहे उसको राधा रानी की जो कृपा है वो प्रदान की है। इसलिए राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के दो माध्यम है। क्या है वो दो माध्यम जिससे राधा रानी की हम कृपा प्राप्त कर सकते हैं? एक माध्यम है श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करने का। एक माध्यम है कि भक्तों की हम सेवा करें, वैष्णव सेवा, और दूसरा है नाम का आश्रय ले। तो राधा रानी, प्रभुपाद कहा करते थे राधे राधे चले आएंगे भी है, क्या है वो सॉन्ग,
राधे रटो चले आएंगे,
तो उससे बिहारी नहीं आने वाले, राधे राधे रटो से नहीं आने वाले, राधा रानी की सेवा करनी पड़ेगी जिससे राधा रानी संतुष्ट होती है। तो राधा रानी संतुष्ट होती है दो चीजों से, एक है वैष्णव सेवा और दूसरा है नाम संकीर्तन। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी थे तो बंगाल से हर साल कई सारे भक्त आते थे जगन्नाथपुरी, और चैतन्य महाप्रभु को मिलते थे 4 महीने। उनकी यात्रा कितने महीने की थी, 4 महीने की, पूरे परिवार के साथ जाके 4 महीने वहां रहते थे चातुर्मास। हम कभी कभी 1 महीने के लिए कार्तिक के लिए आते हैं वहां महाप्रभु के पास रहते थे। जब जाने का समय होता था तो उससे एक दिन पहले सारे भक्त जाते थे महाप्रभु के पास, कहते थे बताइए हमें क्या करना चाहिए जिससे कृष्ण प्राप्ति सरल हो। चैतन्य महाप्रभु हमेशा एक ही वाक्य बोलते थे। हर साल वो भक्त लोग पूछते थे, महाप्रभु हर साल वही बोलते थे। महाप्रभु कहते थे वैष्णव सेवन और नाम संकीर्तन, ये दो चीजें किया करो। तो इसलिए हम चाहे ब्रज में हो या ब्रज के बाहर हो, ये दो चीजें हमें किसी ना किसी प्रकार से करने का प्रयास करना चाहिए। वैष्णव सेवा छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केबा, हाँ नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि कैसे हमारा इस संसार से निस्तार या मुक्त हो सकते हैं हम, तो वैष्णव सेवा करना। और दूसरा है भगवान का ये जो पवित्र नाम है, हमें कुछ और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। साहब सब कुछ कहाँ है, इस थैली में रखा है, प्रभुपाद ने थैली ऐसे दी है, हम मोबाइल भी उसी में भी रख देते, पैसे भी रख देते, तो सब सब चीजें समाए इसमें है ऑलरेडी, लेकिन इसमें हाँ प्रेम नाम, कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना है, तो ऐसा नाम संकीर्तन विशेष रूप से हमें करना चाहिए। हाँ ऐसा अब देखो सेवा कुंज में श्यामानंद पंडित सेवा करते थे, सुबह सुबह उठ के झाड़ू लगाते थे, वैष्णव वहां से गुजरते हैं, इसलिए राधा दामोदर मंदिर के उस एरिया में, तो वहां सेवा वैष्णव सेवा करते करते क्या मिला था उनको वहां, राधा रानी, सीधा राधा रानी से संबंध है वैष्णव सेवा का। हाँ क्योंकि वैष्णव जन हाँ राधा रानी के प्रिय है, हाँ क्योंकि उनके वो अनुगत होकर कृष्ण की सेवा करते हैं, इसलिए कृष्ण प्राप्ति में दो यहाँ ब्रज में दो ग्रुप है, एक कृष्ण की पार्टी और एक है किसकी पार्टी, राधा रानी की। अभी चूज करना है या हमारे पास हम किसकी पार्टी ज्वाइन करनी है, तो राधा रानी के सारे गौड़िया वैष्णव अब किसकी पार्टी में है, राधा रानी के पार्टी में, इसलिए हमें रूपानुग कहा जाता है, रूप गोस्वामी के अनुगत होकर हम भजन करते हैं, इसलिए सारे जो परंपरा के आचार्य हैं वो केवल राधा रानी के ग्रुप में है, तो हमें भी कोई ग्रुप चूज नहीं करना है कृष्ण का, हम भी राधा रानी के ग्रुप वाले हैं। तो राधा रानी की जब सेवा करते हैं हाँ तो उसमें भी हाँ दो कृष्ण की सेवा में दो ग्रुप है, ये दो सर्कल है, कृष्ण को यदि बीच में रखो तो उसके पहले एक सर्कल है फिर बाद में एक सर्कल है, तो जो बाद वाला सर्कल है वो बलराम जी का है और वहाँ गुरुजन है, और उसके अंदर वाला सर्कल किसका है, राधा रानी का है, जहाँ वो कृष्ण की सेवा करती है। तो इस प्रकार से जब श्यामानंद पंडित को वो नुपुर प्राप्त होता है तो राधा रानी की कृपा उन्हें मिलती है। और दूसरा देखो यहाँ साक्षात राधा कुंड में रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर बैठकर क्या करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो केवल नाम संकीर्तन या हरे नाम का जप करते थे, लेकिन उस समय उनके पास कोई घर नहीं था कुछ, वो समय तो ये जो कुटिया है ये एग्जिस्ट नहीं कर, भजन कुटीर जो है उसका क्या कहते हैं सर्च नहीं हुआ था, क्या खोजा नहीं गया था या उससे पहले प्रकट नहीं हुआ था, तो फिर ये बैठते थे और खुले में सूरज की इतनी गर्मी और उसमें बैठ के जब करते थे, तो राधा रानी से देखा नहीं, राधा रानी जब नाम कोई करता है गंभीरता से राधा रानी पिघल जाती है, आकर रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या करते है आपने चुनरी या पल्लू से ऐसे वो छाया करते, आप सोचो कितना महत्वपूर्ण है नाम आश्रय। इसलिए एक आचार्य हमारे जगदानंद पंडित उन्होंने ग्रंथ लिखा है प्रेम विवर्त, उसमें वो कहते हैं कि साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाहे संसार जिने त्यार कौन वस्तु न, मुझे तो दो ही चीजें चाहिए हाँ साधु संग और कृष्ण नाम, इससे इसके अलावा इस संसार को जीतने के लिए किसी और में सामर्थ्य नहीं है, तो ये दो चीजों की आशा करनी चाहिए, साधु संगे कृष्ण नाम हाँ यही भगवान से हमें मांगना चाहिए श्रीमती राधा रानी से, तो ये दो चीजें करते हैं तो वास्तव में हम क्या करते हैं कृष्ण की सेवा करते हैं, क्योंकि राधा रानी के हृदय में कौन है सदैव कृष्ण है, कृष्णमयी, इसलिए राधा रानी का नाम क्या है कृष्णमयी, कृष्णमयी कृष्ण जार भीतर बाहिरे जहा जहा नेत्र पड़े तहा कृष्ण स्फुरे, कि कृष्णमयी कृष्ण जार भीतर बाहिरे, तो राधा रानी कृष्णमयी है, कृष्ण भावना भावित, सबसे ज्यादा कृष्ण भावना से भावित कोई है तो कौन है राधा रानी है, तो उनके आश्रय में रहेंगे तो हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं, और राधा भावना भावित, जैसे राधा भावना भावित कौन है कृष्ण है, हमें क्या बनना है कृष्ण कॉन्शियस बनना है, लेकिन कृष्ण को कौन सा कॉन्शियस बनना है राधा कॉन्शियस, हाँ तो ऐसी स्थिति है कृष्ण की, तो कृष्ण भी लगे पड़े हैं और हम भी लगे हुए हैं, तो इसलिए है कृष्ण के लिए सबसे अधिक प्रिय कोई है तो वो श्रीमती राधा रानी है, इतनी अधिक प्रिय कि जब इन द्वारका वाले रानियों को बड़ा घमंड रहता है, विशेष रूप से जो सत्य भामा है ना उसको लगता है मुझसे सुंदर कोई है ही नहीं, वो हमेशा कृष्ण को इम्प्रेस करना चाहते, लेकिन कृष्ण किसी के सौंदर्य आदि से इम्प्रेस नहीं होते, इस संसार में हम जीवन गवा देते हैं सर्व साधारण लोगों को इम्प्रेस करने में, हाँ और बाद में सोचते अरे जीवन चला गया इम्प्रेस करते करते, इम्प्रेस करना है तो किसको करो राधा रानी या कृष्ण को सेवाओं के द्वारा, तो ये सत्यभामा को लगा कृष्ण मैं सुंदर हूँ, मेरे उसको कंट्रोल करने की बड़ी भावना रही थी, कृष्ण को कंट्रोल में रखना है आपने, इसलिए उनके गुरु कौन है सत्यभामा के, नारद। एक बार किया भी था कृष्ण को उन्होंने कंट्रोल तो, लेकिन देखा कि ये कृष्ण तो सदैव किसी और के कंट्रोल में है, किसके कंट्रोल में है, राधा रानी। इसलिए प्रभुपाद कहते कृष्ण इज द प्रॉपर्टी ऑफ श्रीमती राधा रानी। हाँ, प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं ना वैसे कृष्ण की जो राधा रानी की प्रॉपर्टी केवल कृष्ण है, तो ऐसे कृष्ण हमेशा द्वारका में सोचते थे राधा रानी के बारे में, तो इन सबको लगे राधा रानी को देखने कौन, क्या वो वस्तु क्या है, क्या है उसमें, ऐसे वो ब्रज की बाला है वहां तो वो लोग क्या, उनके पास थोड़ी सौंदर्य है वस्त्र आभूषण इतना तो नहीं होगा, हम तो रानियां हैं द्वारका की। तो लेकिन एक बार श्रीमती राधा रानी आई और उनको देखने मात्र से ये सत्यभामा मूर्छित होकर गिर पड़ी कि अरे ऐसा सौंदर्य, वो मूर्छित होकर गिर पड़ती है वहां, बिंदु सरोवर है अहमदाबाद के पास, वहां वो लीला हुई थी। तो ऐसे राधा रानी आई और कृष्ण जानते थे राधा रानी को क्या कब चाहिए, तो राधा रानी के लिए कृष्ण ने कहा रात को श्रीमती राधा रानी सोने से पूर्व दूध पीती है, दूध स्वीकार करती है, आप उनको दूध दे दो। तो ये रुक्मिणी रुक्मिणी देती है शायद, हाँ गरम दूध देती है और दूध देकर राधा रानी उसको स्वीकार करती है। और जब आती है रुक्मिणी आके कृष्ण के चरण चरणों का मसाज दबाने लगती है, देखते कि कृष्ण के चरणों में क्या पड़े हुए हैं, छाले पड़े हुए हैं, छाले पड़े। तो इनको लगा अरे ये कहाँ चल के चलने गए थे, राजा है बिना शूज के कहाँ जाएंगे। तो उनको पूछा तो कृष्ण कहते हैं, कृष्ण बोलते हैं उनको क्यों मेरे इसमें छाले हैं, वो कहते हैं श्री राधिकाया हृदया रविंदे पादा रविंदम ही विराजते मैं। वो कहते हैं कि मेरा जो चरण है ना, ये देख रहे हो चरण, ये यहाँ नहीं रहते मेरे पास, यहाँ रहते हैं राधा रानी के, श्री राधिकाया हृदया रविंदे, हृदय रूपी जो कमल है उसके ऊपर क्या करते आसीन हो जाते हैं, पादा रविंदम, ये भी अरविंद है, वो हृदय भी कमल के समान है और चरण भी कैसे है कमल के समान, इतने मृदु है, पादार विंदम ही विराजते में, मेरे चरण कमल सदैव उनके हृदय कमल में आश्रय लेते हैं। अहर निशम प्रश्रय पाश बद्धम लवम लवार्दम न चलत तीव, दिन रात वो उधर ही चरण विश्राम करते हैं, वो थोड़े भी इधर उधर नहीं चलते। और इसलिए वो कहते हैं कृष्ण कि तुमने क्या किया है, उनको इतना गर्म दूध पिलाया है जिसके कारण वहाँ चरण जो उनके हृदय में थे उनको क्या हो गए, छाले पड़ गए। सोचो कितना राधा रानी का ये है, कृष्ण से इतना विशेष संबंध है। इसलिए वास्तव में कहते हैं कि ये भागवत की रचना हुई है केवल राधा रानी की महिमा को स्थापित करने के लिए। हाँ, इसलिए कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण राधा रानी का स्थान है, लेकिन राधा रानी का आश्रय हमें लेना चाहिए प्रभुपाद के माध्यम से, प्रभुपाद की शिक्षाओं को समझ कर। नहीं तो क्या करते, ब्रज में लोग बह जाते हैं, प्रभुपाद को कोई राधे राधे भी बोलता था तो प्रभुपाद क्या बोलते थे, हरे कृष्णा, मॉर्निंग वॉक में आता है, हाँ आप सुनते हैं रिकॉर्डिंग, तो प्रभुपाद जब चलते थे छठीकारा के रोड में इस रमन व्यक्ति से, तो लोग आते ब्रजवासी राधे राधे स्वामी जी, प्रभुपाद कहते हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से हमें राधा रानी का आश्रय लेना चाहिए, लेकिन कैसे, आध्यात्मिक गुरु के और प्रभुपाद के माध्यम से। इसलिए गुरु को रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मन शिक्षा में कहते हैं कि गुरु ये मुकुंद प्रेष्ठ है, मुकुंद प्रेष्ठ मीन्स मुकुंद के बहुत प्रिय, हम कहते हैं ना कृष्ण प्रेष्ठाय, प्रेष्ठाय मीन्स प्रिय, कृष्ण के बहुत प्रिय है। वैसे जो शिष्य है उसको अपने गुरु को देखना कैसे चाहिए, भौतिक आंखों से नहीं, आध्यात्मिक अंडरस्टैंडिंग से, कि ये राधा राधा प्रेष्ठ सखी ऐसा शब्द यूज किया है, कि आध्यात्मिक गुरु श्री गुरु क्यों बोला गया है, श्री मीन्स क्यों, क्या है, श्रीमती राधा रानी, जिन गुरु श्रीमती राधा रानी के आश्रय में है एकमात्र वो श्री गुरु है, और उनको एक शिष्य देखता है राधा प्रेष्ठ सखी, राधा रानी की प्रिय एक प्रकार से सखी है, ये बहुत अधिक प्रिय है आध्यात्मिक गुरु, इसलिए हाँ ये हमें इस दृष्टि से देखना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद के जो गुरु है भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उन्होंने प्रभुपाद को ऑर्डर दी, महत्वपूर्ण जो आदेश दिया, और वो कहाँ दिया, राधा कुंड के तट पर दिया, जहाँ वो संगम होता है ना, वहाँ भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि तुम्हारे पास धन आता है तो क्या करो, ग्रंथ छापो, हाँ, तो वो संगम में दिया क्यों? क्योंकि प्रभुपाद क्या करते हैं, जीवों को संगम करवाते हैं। क्या संगम का मतलब? मिलन होता है ना, सारे जगत के जीवों को पकड़ पकड़ के राधा रानी के चरण में डालते हैं। राधा रानी किसको ऑफर करती है? कृष्ण को। तो इस प्रकार से सारी सेवाएं राधा रानी तब स्वीकार करती है यदि व्यक्ति गुरु और हाँ प्रभुपाद के माध्यम से उनको अप्रोच करता है। तो ये बरसाना वो स्थान है जहाँ हम राधा रानी का आश्रय ले सकते हैं, राधा रानी को हाँ प्रार्थना कर सकते हैं, जिसके द्वारा कृष्ण की जो सेवा है वो हमें सरलता से प्राप्त हो सकती है। इसलिए दो चीजें जैसे मैंने कही, एक है नामे रुचि और दूसरा है वैष्णव सेवा। इन दो चीजों को अपने जीवन में डालने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब हम कृष्ण का नाम गाते हैं हाँ तो राधा रानी की कृपा प्राप्त करते हैं। हाँ, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने एक बुक में लिखा है, कृष्ण नाम गाने भाई राधिका चरण पाए, राधा नामे राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र। इस प्रकार से वो कहते हैं कि कृष्ण नाम का उच्चारण करने मात्र से श्रीमती राधा रानी को हम सरलता से अप्रोच करते हैं या प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए ये विशेष विशेष स्थल है जहाँ कृष्ण आते हैं सखी वेश में और मोर बन के यहाँ नाचते हैं। कौन सा है वो मोर कुटी जो पीछे था? क्योंकि राधा रानी कृष्ण जब सुबह सुबह आते थे यहाँ मिलने के लिए तो कृष्ण दूर से ही आवाज लगाते थे। कौन सी आवाज निकालते थे? मोर की आवाज। तो राधा रानी कह सोचती थी कि मेरा मोर तो आ गया है, तो राधा रानी फिर निकल जाती थी अपने महल से। तो कीर्तिदा कहती थी कहाँ जा रही हो? कहते आती हूँ थोड़ा मोर का दर्शन करके देख के आती हूँ। तो ये जो मोर कुटी है वहाँ तो कई सारी लीलाएं हैं। तो वहाँ तो ये भी कहा जाता है कि कृष्ण मोर बन के नाचे थे, श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न किया था। जब पहले मोर भी नाच रहा था फिर कृष्ण भी नाच रहे थे। राधा रानी कहते अच्छा तुम तो आज बहुत अच्छे नाच रहे हो लेकिन मोर ज्यादा अच्छा नाच रहा है। तो कृष्ण कहते अच्छा नहीं मैं और अच्छा नाचता हूँ। तो ऐसे कई बार हुआ कृष्ण इतना अच्छा अच्छा नाचने लगे फिर राधा रानी हाँ कृष्ण के साथ हाँ वो भी मोर बन के नाचती है। और दूसरा वर्णन आता है कि जब राधा रानी गई हाँ कृष्ण जब आए थे नंदगांव से तो वह गुफा जैसा था वहाँ, और राधा रानी जाती है और कृष्ण से मिलती है। तो वो उस गुफा में अंदर कंदरा में बैठ जाते हैं और कृष्ण ने अपना जो सर है राधा रानी के ऐसे गोद में रखा था और राधा रानी को देख रहे थे, निहार रहे थे उनके मुख कमल को। तो उस समय कीर्तिदा ने सोचा कि अरे राधिका को कहाँ गई, काफी समय होगा हो गया है महल में नहीं है। तो वहां से फिर कीर्तिदा देवी उनको ढूंढने के लिए निकली बाहर, देखा राधा रानी कहाँ है, तो देखा उनके चरण कमल पड़े हुए हैं, उनके चिन्ह को देखकर उनके पीछे पीछे गई। तो वो जो गुफा का गेट था वहां पहुंचते ही उन्होंने राधिका को आवाज लगाई। तो आवाज लगाई तो देखा अरे अभी कीर्तिदा देवी आ गई है, अभी तो हम पकड़े जाएंगे। तो वहां हाँ कृष्ण क्या करते तुरंत ही मोर में बदल जाते हैं और कीर्तिदा को कहते नहीं मैं तो अपने मोर को गोद में लेके बैठी हूँ। और वास्तव में कृष्ण क्या बने थे? मोर। राधा रानी उनको ऐसे सहला रहे थे, फिर उस मोर को वहां छोड़ती है तो बहुत दुख होता है उनको। और वहां उस मोर को छोड़कर राधा रानी को क्या करना था, बाहर आई और फिर यहाँ कीर्तिदा के साथ आती है। तो बहुत सारी परिक्रमाओं में तो हम थक जाते हैं लेकिन बरसाने की परिक्रमा बड़ी अच्छी है। हाँ सुबह सुबह आते हैं और छोटी सी हैं, थकते भी नहीं बहुत ज़्यादा, हल्के हल्के चलते हैं। तो साकरी खोर है ना, आप तो गए होंगे कई बार वहाँ। राजा रानी अब क्या किया था, सबको पकड़ा था। पहले तो ये लोग टैक्स मांगा करते थे, दान लीला वहाँ हुई है, विलासगढ़ है उस तरफ विष्णु का, तो वह दान लीला हुए थे। ये सारे तंग करते थे गोपियों को, राधा रानी को। तो इन राधा रानी का अभी कल ऐसी योजना बनाते कि सबको पकड़ लेंगे हम, और सबको पकड़ते हैं और सबकी चोटियां क्या करते हैं, पेड़ों से बांध देते हैं। मधुमंगल को मधुमंगल कृष्ण कहते हैं अरे मेरी चोटी छोड़ो कन्हैया, तो मेरी बंदी पड़ी है तो तुम्हारी कहाँ आके छोड़ो। तो लेकिन वहाँ जब सब पकड़े गए, कृष्ण को पकड़ती है ललिता देवी आदि, विशाखा और राधा रानी वगैरह, और उनको वस्त्र पहना देती है। कौन से वस्त्र? गोपी का के, सखी के, और पहना कर उनके ऊपर मटका घड़ा रख देते हैं और कहते चलो अभी यहाँ से। जैसे कृष्ण अभी तो चलने लगे तो ललिता सखी क्या करती है, उनको पीछे से पत्थर मारकर सारा जो दही आदि है उनके शरीर पर गिर जाता है। तो वो साकरी कोर है, फिर वहाँ आगे जाते हो तो जहाँ हम उतरे वो चिकसोली गांव है। चिकसोली गांव वो है जो चित्रा सखी का स्थान है। गाड़ी में आपने देखा होगा चित्रा सखी का वो मंदिर था। तो चिकसोली गांव में ये सारी सखियों के गांव आस पास है। आष्ट सखिया श्रीमती राधा रानी के इस स्थान में प्रकट हुई थी, आठ स्थानों में। तो ऐसे चित्रा सखी यहाँ निवास करती थी और वो बहुत एक्सपर्ट थी क्या बनाने में, चित्र बनाने में। कृष्ण अपनी माँ को एक बार कहते मैं काला हूँ इतना कैसे, मुझे विश्वास नहीं होंगे, तो जाओ चित्रा सखी आपका फोटो बना देगी तो आपको पता चलेगा। आजकल के फोटो देख के हम समझ सकते हैं मेरा रूप रंग क्या है। तो वैसे ही चित्रा सखी बहुत एक्सपर्ट थी और राधा रानी वहाँ जाया करती थी चित्रा सखी के पास। हाँ, तो राधा रानी के लिए वो प्रिय स्थान है। और भी लीलाएं हैं, फिर वो गहवर कुंड जिसको हमने क्रॉस किया उसको कृष्ण कुंड भी कहते हैं। गहवर का मतलब बहुत डेंस डार्क फॉरेस्ट है वो गहवर गहन, और वहाँ गहन गहन लीलाएं हुई है। और ये वन वास्तव में राधा रानी ने क्रिएट किया है, गहवर वन विशेष लीलाओं के लिए जहाँ कभी वियोग नहीं है। और यहाँ से राधा रानी गहवर स्वीट भी आता है ना, उसकी भी लीला यहाँ से गुजरती थी स्वीट लेके राधा रानी अपने जावट जाने के लिए। तो कृष्ण को बहुत पसंद, वो बीच में सारा गहवर खा लेते थे। तो गहवर वन है, फिर वहाँ दान बिहारी मंदिर है ना, सुंदर विग्रह है पीछे कुशल बिहारी मंदिर के पीछे दान बिहारी। वहाँ कृष्ण ने राधा रानी का दान किया था। एक ब्राह्मण आया, उसने पत्नी ने कहा जाओ दो बेटियों की शादी करनी है, दो बेटियों की शादी करनी है कुछ धन। तो वो ऐसे ढूंढते ढूंढते ब्राह्मण आया तो यहाँ कृष्ण सखियों के साथ वहाँ थे, सखागण आदि थे। तो उस ब्राह्मण मांगने लगा, उन्होंने कहा मेरे पास तो है नहीं। भगवान ने कहा इसको ले जाओ, आपकी जो प्रिय वस्तु है वो मुझे दे दो। तो ये कृष्ण ने कौन दिया उस ब्राह्मण को, राधा रानी दिया। वो ब्राह्मण कहेगा दो बेटियों की शादी मुझसे नहीं हो रही और तीसरी को कहाँ ले जाओ। तो वहाँ क्या करते हैं, फिर तराजू में राधा रानी को बिठाते हैं और एक और फिर सारा जो अलंकार वगैरह कृष्ण गोपिका सब डालते हैं उस तोल के वो ब्राह्मण को देते हैं। तो दान बिहारी है, कुशल बिहारी है सामने वाला, और राजस्थान के राजा ने बनाया था राधा रानी के लिए, लेकिन राधा रानी वहाँ गई नहीं शायद। लेकिन फिर वहाँ और विग्रह की स्थापना की। फिर ये भानुगढ़ है जहाँ हम हैं, ये विशेष स्थल जहाँ राधा रानी हमेशा निवास करती है। और बरसाना तो वही कई सारे लीलाओं का स्थान है। आजकल होली लीला यहाँ बहुत फेमस है, नहीं मैं तो कभी आया नहीं लेकिन लटमार अच्छा तो बहुत फेमस है यहाँ की जो होली है। तो ऐसा ये स्थान है, बीच बीच में आना चाहिए, बरसाना दर्शन करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन जितना हो सके नाम पर जोर देना चाहिए हमें। जब शरीर हमारा अस्वस्थ होता है बाकी चीजें संभव नहीं है, एक ही चीज होगी क्या है, भगवान का नाम। तो नाम कैसे अच्छे कर सकते हैं, कैसे उसमें डूब सकते हैं, उसके ऊपर हमें निरंतर अध्ययन करना चाहिए और अधिक से अधिक नाम का आश्रय करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। श्रीमती राधारानी की, श्रील प्रभुपाद की, हिदाय गौर प्रेम आनंद।